हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। गीता को पूरी तरह से समझ में नहीं आया कि वहाँ क्या हो रहा था, लेकिन इतने दिनों में वो आदित्य को अच्छी तरह जान गई थी। वो किसी को नुकसान पहुँचाने वाला इंसान नहीं था, उल्टा वो दूसरों का हमेशा खुद से ज्यादा ख्याल रखता था। भले ही अपने मामले में वो बहुत लापरवाह था, लेकिन दूसरों को लेकर बहुत ज्यादा केयरफुल और फिक्रमंद रहता था। क्या हुआ होगा दोनों के बीच? क्या कोई लड़ाई? लेकिन आदि भैया को इस तरह से दरवाज़ा बाहर से बंद नहीं करना चाहिए था, और भाभी ने आज खाना भी नहीं खाया। अपने कमरे में वापस आकर बैठी गीता अपने मन में ये सब सोच रही थी। दूसरी तरफ सुनैना जब अंदर से दरवाज़ा पीट पीट कर थक गई, तो वहीं दरवाजे के पास ज़मीन पर बैठे बैठे थक कर सो गई। आदित्य भी वहाँ कमरे के बाहर दरवाजे के पास ही बैठ गया, और इतने नशे में होने की वजह से कुछ देर बाद उसकी भी आँख लग गई। अगली सुबह 5 या 6 बजे आदित्य की आंख खुली। उसे रात की पूरी बात अच्छी तरह याद थी। खुद को कमरे के दरवाजे के बाहर जमीन पर बैठा हुआ पाकर उसे सब कुछ याद आ गया, लेकिन कमरे के अंदर से सुनैना की कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसे लगा कि सुनैना शायद सो गई होगी और अभी तक उसकी आंख नहीं खुली होगी। आदित्य ने दरवाज़ा खोलकर अंदर देखना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, दरवाजे से टेक लगाकर दूसरी तरफ बैठी सुनैना आदित्य के पैरों के पास लुढ़क गई। ओह गॉड, इतनी ठंड में ये भी यहाँ ज़मीन पर रात भर बैठी बैठी सो गई। कुछ ज़्यादा ही हो गया था शायद कल रात को, और मुझे इसे इस तरह से रूम में लॉक नहीं करना चाहिए था। आदित्य ने सुनैना को इस तरह ज़मीन पर दरवाज़े का टेक लगाकर बैठा देखा तो तुरंत ज़मीन पर बैठ गया। सुनैना का सिर अपनी गोद में रखते हुए और अपने हाथ से उसके गाल पर थपथपाते हुए उसे नींद से जगाने की कोशिश करते हुए बोला, हे सु, उठो उठो, और यहाँ पर क्यों सो रही थी तुम? बेड है ना कमरे में। लेकिन आदित्य के इस तरह उठाने का सुनैना पर कोई असर नहीं हुआ। आदित्य फिर से उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड की तरफ ले जाने लगा। सुनैना का हाथ एकदम नीचे की तरफ गिरकर लटक गया। इस वक्त देखने पर सुनैना सोई हुई बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। उसके चेहरे की तरफ देखते ही आदित्य को समझ में आ गया कि सुनैना सोई हुई नहीं बल्कि बेहोश थी। ये बात समझ में आते ही उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा फिक्र, घबराहट और परेशानी के भाव नजर आने लगे। जो चेहरा हमेशा ज्यादातर भावहीन और बर्फ जैसा सर्द रहता था, उस पर किसी के लिए इतनी ज्यादा फिक्र आज पहली बार नजर आ रही थी। वो एकदम पागल सा सुनैना को हिलाकर होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो आदित्य ने जल्दी से बढ़कर साइड टेबल पर रखा हुआ पानी का ग्लास उठाया और उसमें से पानी की कुछ बूंदें हाथ में लेकर सुनैना के चेहरे पर डालकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन सुनैना अभी भी होश में नहीं आ रही थी। तो आदित्य ने जल्दी से गीता को आवाज लगाई। गीता अब तक जाग चुकी थी, इसलिए वो तुरंत आदित्य की आवाज सुनकर ऊपर आ गई। कमरे के दरवाजे तक आते हुए गीता आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ भैया, आप इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं, और भाभी को क्या हुआ? कमरे के अंदर आते हुए गीता ने आदित्य से पूछा, लेकिन जब तक उसकी नज़र सुनैना पर भी पड़ गई। सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है। अगर इसे कुछ भी हुआ ना, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। आई एम सो बैड फॉर अदर्स, फॉर एवरीवन, नॉट बैड एक्चुअली, आई एम द वर्स्ट। गीता के इस तरह पूछने पर आदित्य सारी बातों का दोष खुद पर लेता हुआ और अपने चेहरे पर आते हुए सारे बाल अपने हाथों से पकड़कर पीछे करता हुआ बोला। उसके चेहरे पर सुनैना के लिए फिक्र के साथ ही आंखों में आंसू भी नजर आ रहे थे, जिन्हें वो काफी मेहनत और मशक्कत करके अपनी आंखों से बाहर निकलने से रोक रहा था। आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है भैया, आप इस तरह से क्यों सोच रहे हैं अभी? आप डॉक्टर को फोन करिए, क्योंकि भाभी ने कल रात को खाना भी नहीं खाया था, तो हो सकता है कि भूख और कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई हो। गीता ने आदित्य को ऐसी हालत में पहली बार देखा था, लेकिन फिर भी वो उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली देते हुए समझाने की कोशिश कर रही थी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, डॉक्टर, हाँ डॉक्टर को फोन करता हूँ मैं अभी। बोलते हुए आदित्य इधर उधर चारों तरफ कमरे में अपना मोबाइल फोन ढूंढने लगा, लेकिन उसे अपना मोबाइल फोन वहाँ नहीं मिला। तभी उसे याद आया कि कल रात को आखिरी बार उसने फोन पर रवि से स्टडी रूम में बात की थी, तो उसका फोन वहीं पर होगा। ये सोचकर वो जल्दी से कमरे से बाहर निकलते हुए स्टडी रूम की तरफ जाने लगा, लेकिन उसने एक पल को रुककर और पीछे मुड़कर एक नज़र बेड पर बेहोश लेटी हुई सुनैना की तरफ देखा और फिर गीता की तरफ देखते हुए बोला, आप यहाँ पर ही रहना दीजिए इसके पास, मैं डॉक्टर और रवि को फोन करके आता हूँ। आदित्य की बात सुनकर गीता ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया। फिर आदित्य जल्दी से वहाँ से निकलकर स्टडी रूम की तरफ आया और अपना मोबाइल फ़ोन ढूंढने लगा। जैसे ही उसे उसका मोबाइल मिला, उसने सबसे पहले डॉक्टर को कॉल लगाया। डॉक्टर से बात हो जाने के बाद आदित्य रवि को कॉल करते हुए वापस कमरे की तरफ आने लगा, क्योंकि उसका पूरा ध्यान अभी भी सुनैना में लगा हुआ था और उसका इस तरह से बेहोश हो जाना आदित्य के मन को बहुत ज्यादा बेचैन कर रहा था और ऊपर से वो इन सब चीज़ों के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा था।